ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 2 अगस्त 2020 के लिए है। विषय प्रेम स्वर्णपथ युहन्ना। भगवान प्रेम है। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास होगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। उत्तरदायी ध्यान लूका। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने साथ भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। वरुण अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यशाया। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिया ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सामुख जाकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिया से कह कि तेरे मूल अपूर्वज दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु उस पर चलकर हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी ठीक हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसली बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वो हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा तो वो जी उठी। युहन्ना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और उसको बीच में खड़ी करके यशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्याभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरावा करें, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात की थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। लूका। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वो उसे बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे? और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसनों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। इब्रानियों। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। अब मैं मेरी बिकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्कृष और सर्वभाविक है। ये खुला फवारा है जो कहता है, ओह, हर एक जो प्यासा है तुम पानी के पास आओ। पुराना नियम परमेश्वर के दिव्य संदेशों विभिन्न कार्यालयों को प्रदान करता है। मिकाएल की विशेषता आध्यात्मिक शक्ति है। वो पाप शैतान की शक्ति के खिलाफ स्वर्ग के बाहरूपियों का नेतृत्व करता है और पवित्र युद्धों से लड़ता है। जिब्राइल के पास हमेशा प्रेम की उपस्थिति की भावना प्रदान करने का अधिक शांत कार्य है। ये स्वर्गदूत हमें गहराई तक पहुंचाते हैं, सत्य और प्रेम शोक की घड़ी में आते हैं जब मजबूत विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति कुश्ती करते और भगवान की समझ के माध्यम से प्रबल होते हैं। उनकी उपस्थिति के जिब्राइल में कोई प्रतियोगिता नहीं है। असीम सदा सदा के लिए सब प्रेम है, और ना कोई त्रुटि है, ना कोई पाप, ना बीमारी, ना मृत्यु। प्रेम के खिलाफ अजगर लंबे समय तक युद्ध नहीं करता क्योंकि वह दिव्य सिद्धांत द्वारा मारा जाता है। अजगर के खिलाफ सत्य और प्रेम प्रबल होते हैं क्योंकि अजगर उनसे युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार मांस और आत्मा के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्रेम उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा सिद्धांत है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता को चुताकी दी। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस उचित अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझाने की कोशिश की, अर्थात ईश्वरी प्रेम का नियम। दुखों का आदमी भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता और सभी साम्यवशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। पुरितान माता पिता से क्रिश्चियन साइंस की खोजकर्ता ने जल्दी से अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वो अक्सर अपनी धार्मिक माँ के होंठों से खुशी के साथ ये शब्द सुनती थी, भगवान आपको बीमारी से ठीक करने में सक्षम है, और वो उस पवित्र शास्त्र के अर्थ पर ध्यान देती थी जिसे वो अक्सर उद्धृत करती थी, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। यीशु ने हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं दिया, अगर हम उसकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करें और सभी ने अपने प्रेम के प्रदर्शन के अनुपात में पीने के लिए दुखड़ प्रयास किए जब तक सभी दिव्य प्रेम के माध्यम से मुक्त नहीं हो जाते। यीशु के शिक्षण और सत्य के अभ्यास में ऐसा बलिदान शामिल है जो हमें अपने सिद्धांत को प्रेम के रूप में स्वीकार करता है। ये हमारे गुरु के पाप राहित जीवन और मृत्यु पर उसकी शक्ति प्रदर्शन का अनमोल अयात था। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि क्रिश्चियन साइंस बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करती है। यदि वैज्ञानिक दिव्य प्रेम के माध्यम से अपने रोगी तक पहुंचता है, चिकित्सा कार्य एक यात्रा में पूरा किया जाएगा और रोग सुबह की धूप से पहले की औस की तरह अपने मूल शून्यता में गायब हो जाएगा। जिस चिकित्सक को अपने साथी के प्रति सहानुभूति की कमी है, वो मानवीय स्नेह में कमी रखता है, और हमारे पास जाने के लिए अपोस्टोलिक ज्ञान है, जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस आध्यात्मिक स्नेह के ना होने पर चिकित्सक को दिव्य मन में विश्वास की कमी है और असीम प्रेम की मनियाता नहीं है जो अकेले ही चिकित्सा शक्ति प्रदान करता है। इस तरह की तथाकथित वैज्ञानिक मक्खियों को बाहर निकाल देंगे जबकि वो बड़े पैमाने पर साहतिकता के ऊंटों को निगल लेंगे। निविदा शब्द और मसीहियों को एक अवैध दयनीय धैर्य के साथ अपने भय और उसे हटाने के लिए प्रोत्साहित करना कुटल सिद्धांतों की जद्दोजहद से बेहतर है। उधार दिए गए भाषण, जिसकी वेद क्रिश्चियन साइंस पर इतनी सारी नकल है, ये दिव्य प्रेम के साथ है। प्रेम में उत्साह होता है, उस बुराई या पदार्थ में ना तो बुद्धिमता है और ना ही शक्ति। पूर्ण क्रिश्चियन विज्ञान का सिद्धांत है और ये महान सत्य है जो त्रुटि से सभी भेद को अलग करता है। सच्ची खुशी के लिए मनुष्य को अपने सिद्धांत दिव्य प्रेम के साथ सम्मान जैसे करना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप होना चाहिए, मसीह के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वरी विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक प्रकार से पूर्ण रूप से मन के रूप में है जो उसे बनाता है। मनुष्य होने का सत्य मनुष्य के समान जैसा पूर्ण और अमर बनाता है, जबकि त्रुटि नश्वर और कलाकारी होती है। लाखों अजय मन सत्य के सरल साधक, थके हुए भटकने वाले, रेगिस्तान में प्यासे, आराम करने वाले और पीने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मसीह के नाम पर एक कप ठंडा पानी दें और उसके परिणामों से कभी न डरें। प्रेम प्रकृति को समर्थ करता है, बड़ा करता है, शुद्ध करता है और उसे उन्नत करता है। पृथ्वी के ठंडे धमाके स्नेह के फूलों को उखाड़ सकते हैं और उन्हें हवाओं में बिखेर सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंधों का यह विचालन ईश्वर के प्रति अधिक नित्यता से विचार करने का कार्य करता है, क्योंकि प्रेम संघर्षशील हृदय का समर्थन करता है जब तक कि वो दुनिया को छोड़ नहीं देता और स्वर्ग के लिए अपने पंखों को खोलना शुरू नहीं करता। निम्नलिखित भजन संहिता में एक शब्द दिखाई देता है, हालांकि माद रूप से क्रिश्चियन साइंस जो प्रकाश देवता के आध्यात्मिक अर्थ के साथ भावतिक अर्थ के लिए प्रतिष्ठापन द्वारा शास्त्र पर डालता है। भजन संहिता 23। दिव्य प्रेम मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। प्रेम मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रेम मुझे सुखादायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेम मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में प्रेम अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है। प्रेम के सौंते और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेम ने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं प्रेम के धाम चेतना में वास करूंगा। प्रेम कभी प्रेम की दृष्टि नहीं खोता है। अब मैं मीर बिकरेड़ी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।